آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
آج کے مکھیہ سماچار وشالی جین کے ساتھ۔ ساؤتھ آسٹریلیا میں سنگل یوز پلاسٹک پر بین آج سے لاگو۔ بھارت میں پردھان منتری مودی نے لگوایا کووڈ 19 کا ٹیکہ۔ اور آسٹریلیا کے الیکسی پوپرن نے جیتا اپنا پہلا اے ٹی پی ٹائٹل۔ اور اب خبریں وستار سے۔ رائل کمیشن کی رپورٹ کے سجھاؤ مان کر سنگھیہ سرکار نے ایجڈ کیئر سدھار کے لیے 452.2 million dollars کی شروعاتی فنڈنگ کی گھوشنا کی ہے۔ دا رائل کمیشن ان ٹو ایجڈ کیئر کوالٹی اینڈ سیفٹی نے قریب 2 years تک اس رپورٹ پر کام کرتے ہوئے 640 گواہوں سے بات کی اور 10,500 لکھت جوابوں کو سنکلت کیا۔ اپنی رپورٹ میں کمیشن نے 148 سجھاؤ پریشت کیے ہیں، جن میں بزرگ لوگوں کے ادھیکار سرکشت کرنے کے لیے نئے قانونوں کی مانگ اہم تھی۔ پردھان منتری موریسن نے کہا ہے کہ آسٹریلیائی بزرگوں کے ادھیکار اور ضرورتیں ایجڈ کیئر کی دھوری ہونے چاہئیں۔
I'm committed to dealing with the issues that are raised in this report together with my government team, and it will test all of us. It'll test my government, it'll test the budget, it'll test the parliament, it'll test the way in which we are prepared to deal with this issue. as a once in a generation opportunity to actually change it for a new generation. That's the test for all of us.
سرکار نے رائل کمیشن کی 31 مئی تک رپورٹ پر پورے جواب دینے کی مانگ کو مان لیا ہے۔ سنگھیہ کوشادھیکش جوش فرائڈنبرگ کا کہنا ہے کہ ایک انامت کیندریہ منتری کے خلاف لگے بلاتکار کے آروپوں کو اچت ڈھنگ سے جانچا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے گرینز سانسد سارا ہینسن یانگ، لیبر سانسد پینی وانگ اور پردھان منتری کو پتر دوارا اس شکایت کی ساری جانکاری دی گئی تھی۔ شکایت کرتا مہیلا پچھلے سال نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے پاس مدد مانگنے گئی تھیں، لیکن یہ جانچ تب بند پڑ گئی جب انہوں نے اپنی شکایت واپس لینے کے بعد آتم ہتیا کر لی تھی۔ شری فرائڈنبرگ کا کہنا ہے کہ قانونی کاروائی اپنے طریقے سے ہی ہونی چاہیے۔
I think it's really important here that we understand that people are entitled to the presumption of innocence. It doesn't matter what political party they come from, it doesn't matter what business that they work for, it doesn't matter what their background, their race, their religion. They're entitled to the presumption of innocence. And this is Australia after all. And everybody jumping on here and making these issues the subject of, as you say, further inquiry, leave that to the police where they are the most appropriate authorities to handle it.
گرین سانسد سارا ہینسن یانگ نے اے بی سی سے کہا ہے کہ جب تک اس معاملے پر کوئی پورو جج سوتنتر جانچ پوری نہیں کر لیتے، ان انامت کیندریہ منتری کو اپنے پد سے ہٹ جانا چاہیے۔
It can't be resolved by the police because this woman has died and the rules around these issues in New South Wales, which is why the letter was written to the three of us in the first place, calling for some type of discreet inquiry, something along the lines of what happened with the Dyson Heydon case, a former retired judge being able to look at the brief of evidence, consider what information is available, and then give some recommendations to the Prime Minister.
یون اتپیڑن کی جانکاری یا سمرتھن پانے کے لیے آپ 1800 RESPECT کو 1800 737 732 پر سمپرک کر سکتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز کی پریمیئر گلیڈس برجکلین کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے راج میں ایسٹرازینیکا ویکسین کے آنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ آسٹریلیا کے دوا نیامک ٹی جی اے میں اس ویکسین کے پہلے بیچ کی جانچ جاری ہے، اور یہ لکش ہے کہ شروعاتی 30,000 ٹیکے 8 March تک راجیوں میں وترت کر دیے جائیں گے۔ سشری برجکلین کا کہنا ہے کہ ٹیکہ کرن شروع ہونے کے بعد ان کے راج کے سواستھیہ ادھیکاری دینک ٹیکہ کرن در بڑھانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔
And I'm pleased that to date New South Wales is well on track to meet its target of 35,000 vaccines being administered in the first 3 weeks. I would appreciate, of course, as much timely information as possible from the federal government. We won't know yet beyond week four how many doses New South Wales will have, but I can assure you this, that we are ready to make sure we get the doses to the community as soon as possible.
पिछले हफ्ते करीब 30,000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को टीकाकरण अभियान शुरू होने के साथ ही फाइजर टीके की पहली खुराक मिली थी। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि संघीय सरकार के अक्टूबर तक कोविड-19 के खिलाफ 20 मिलियन से अधिक लोगों को टीका देने के लक्ष्य को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होगी। संक्रामक रोग विशेषज्ञ संजय सनानिया का कहना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोज टीका लगने की दर का बढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि टीकाकरण अभियान अब भी शुरुआती चरणों में है।
We had 30,000 doses given over 5 days last week. So you're right, that was only 6,000 a day. And if we want to reach that end of October mark, we need to get up to about 150,000 a day. But start slow, iron out wrinkles and build up the capacity to give the vaccine. So that's quite a reasonable thing to do.
पर्यावरणविदों का मानना है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे बैन से अन्य राज्य भी ऐसा कदम उठाने को प्रेरित होंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा राज्य है जिसने पिछले सितंबर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का निश्चय किया था। इसके बाद क्वींसलैंड ने दिसंबर में और विक्टोरिया ने गत 27 फरवरी को अपने अपने राज्यों में ये बैन घोषित कर दिया था। साउथ ऑस्ट्रेलिया में आज से ये बैन लागू होगा, जिसमें अब प्लास्टिक के एकल प्रयोग के छुरी, कांटे, स्ट्रॉ या अन्य कटलरी नहीं बेचे जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलियन मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी के प्रवक्ता शेन कुकाओ का कहना है कि यह नियम समूचे ऑस्ट्रेलिया में लागू होने चाहिए।
What we're seeing is around the country, other states are following suit. Over the weekend, for example, Victoria has also announced that they're going to be moving to ban single-use plastics as well in the coming years. And they're going a step further, tackling things like cotton buds. We're also seeing governments like Western Australia commit to tackle things like heavyweight plastic bags and balloons, which are actually one of the most lethal plastics out there in our ocean. So we know that there's more that the South Australian government can be doing, but this is a very promising first step.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में 18 प्रदर्शनकारियों की मौत की निंदा की है। सेना ने रविवार को 28 फरवरी को तख्ता पलट विरोधी रैलियों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में अफसोस जाहिर करते हुए ये कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हिंसा अस्वीकार्य है। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे और वैक्सीन की पहली खुराक ली। साथ ही उन्होंने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। भारत में अब तक कोरोना के 1,10,96,731 कुल मामले सामने आए हैं, जिनमें से करीब 1,57,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सावधानी ना बरती गई तो तीसरी लहर और भी घातक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ना ही केवल क्षेत्रीय पार्टियां होकर रह गई हैं, बल्कि पारिवारिक भी बन गई हैं। उनका कहना है कि दूसरी तरफ बीजेपी ने पार्टी को ही परिवार बना लिया है।
आप देखिए, भारत में सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिलाकर के सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन, सारी पार्टियां परिवार की पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया, ये हमको समझना चाहिए।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वे पुनः संगठित हो। श्री अब्दुल्ला ने कहा है कि सारा देश इस वक्त कांग्रेस से उम्मीद लगाए हुए है।
I want Congress to unite and fight divisive forces of the country. Congress must unite. Congress must become strong. People look forward to Congress in the country. They are part of this nation. They've been a party of nearly 150 years.
और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.10 रुपए और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन ने सिंगापुर ओपन जीतकर विश्व रैंकिंग में ऐतिहासिक 82वां स्थान हासिल किया है। 21 साल के पोपरिन ने एलेक्जेंडर बुबलिक को 3 सेट में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। श्री पोपरिन का कहना है कि वे पूर्व विश्व नंबर 1 लेटन हिविट को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो जाने के बाद से मोटेरा स्टेडियम की पिच चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां वेंगासकर और मॉन्टी पनेसर जैसे दिग्गज खिलाड़ी पिच की आलोचना कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लॉयन ने अब इस पिच का बचाव किया है। उन्होंने कहा, दुनिया भर में जब तेज गेंदबाज विकेट चटकाते हैं तब किसी को शिकायत नहीं होती, पर जैसे ही बॉल स्पिन करने लगती है हल्ला मच जाता है। मुझे ये मैच बेहद रोमांचक लगा। मुझे नहीं लगता कि इस पिच में कोई भी समस्या है। भारत ने बीती 26 तारीख को इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर दूसरे टेस्ट में विजय हासिल की थी। और अंत में डालते हैं एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल बारिश के साथ तूफान की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में तेज धूप रहने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 17 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में तेज धूप खिली रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में धूप छांव का मौसम रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल आंशिक तौर पर बादल घिरे रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप ही धूप है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।